डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट यशाया 17:13 26-27 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशाया की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 13 यशाया अध्याय 26 और 27 है। आइए एक साथ प्रार्थना करें। पिता, हमारे लिए आपके सभी प्रावधानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम उस वर्षा के लिए धन्यवाद देते हैं जो पृथ्वी को सींचती है। आपने क्या अद्भुत व्यवस्था बनाई है कि बारिश नदियों के माध्यम से महासागरों तक जाती है, बादलों में बढ़ती है और पृथ्वी को पानी देने के लिए वापस आती है। हमें क्षमा करें कि हम शिकायत करते हैं। यदि बहुत अधिक धूप हो तो हम शिकायत करते हैं। यदि बहुत अधिक वर्षा होती है तो हम शिकायत करते हैं। यदि बहुत ठंड है तो हम शिकायत करते हैं। यदि बहुत गर्मी हो तो हम शिकायत करते हैं। हम कट्टर शिकायत करता हैं। कृपया हमें क्षमा करें। हे भगवान, अपने सभी उपहार प्राप्त करने और उन्हें खुशी और खुशी से प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। और हमेशा की तरह हमें आपका दूसरा सबसे अच्छा उपहार प्राप्त हुआ। आपका सबसे अच्छा उपहार यीशु था। धन्यवाद। और आपका दूसरा सबसे अच्छा उपहार आपका लिखित शब्द है। धन्यवाद। अपने शब्द के अध्ययन में यह अगला घंटा बिताने का सौभाग्य पाने के लिए धन्यवाद। हमारी मदद करो प्रभु। मेरी सहायता करो। उन लोगों की सहायता करें जो सुनते हैं। मिलकर हमारी मदद करें। आपके प्रति एक दूसरे के प्रेम और आपके वचन की इच्छा से प्रेरित होने में हमारी सहायता करें। हे प्रभु, गहराई तक बढ़ने में हमारी सहायता करें। हमें कम से कम उन लोगों की तरह बनने में मदद करें जिनका वर्णन यशायाह के अध्याय 1 में किया गया है, जो गधे से भी अधिक मूर्ख हैं और नहीं जानते कि चरनी कहाँ है। हे प्रभु, आपने हमें जो विवेक का स्तर दिया है उसके लिए धन्यवाद कि हम जानते हैं कि चरनी कहाँ है और हम आज रात उसके पास आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें खिलाएंगे। धन्यवाद। आपके नाम पर आमीन। कोई पूछ रहा था, चूंकि जैसा कि उन्होंने कहा, आपने न्यू लिविंग ट्रांसलेशन लिखा है जो बिल्कुल सही नहीं है, तो आप इसका उपयोग क्यों नहीं करते? खैर, मैं इस तरह के अध्ययन के लिए इसका उपयोग नहीं करता क्योंकि न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बड़े खंडों को पढ़ने के लिए सर्वोत्तम है। यह बहुत पठनीय है। यह बहुत तत्काल है। और इसलिए मैं अपने छात्रों से कहता हूँ, और जैसा कि मैं यशायाह कक्षा से कहूँगा कि मैं इस वसंत में पेशकश कर रहा हूँ, आपको वास्तव में 2 बाइबल की आवश्यकता है। आपको एक ऐसे अनुवाद की आवश्यकता है जो एक प्रकार का शाब्दिक अनुवाद हो, जैसे इस मामले में मैं पद्दरपद्य अनुभाग दरनुभाग अध्ययन के लिए अंग्रेजी मानक संस्करण का उपयोग कर रहा हूँ। बड़े खंडों को पढ़ने और प्रवाह को महसूस करने के लिए आपको न्यू लिविंग ट्रांसलेशन की भी आवश्यकता है। जब आप शाब्दिक अनुवाद पढ़ रहे हो तो प्रवाह को महसूस करना कठिन होता है, लेकिन इसलिए दोनों का उपयोग करें और हम इस तरह के करीबी काम के लिए अधिक शाब्दिक अनुवाद का उपयोग करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि यह सोचे समझे अनुवाद से बेहतर है। कई मायनों में मैं अपनी भक्ति के लिए हर समय न्यू लिविंग का उपयोग करता हूँ। कई मायनों में विचार के लिए विचार अनुवाद एक बेहतर अनुवाद है क्योंकि यह विचार को पकड़ता है। कभी कभी शाब्दिक अनुवाद शब्द दर शब्द हो सकता है और आप वास्तव में इस विचार को भूल जाते हैं। तो लोग कहते हैं, अच्छा, अधिक सटीक क्या है? क्या सटीक है? और वैसे कोई शाब्दिक अनुवाद नहीं है। कोई नहीं। निर्गमन 34:6। हमने निर्गमन अध्ययन के दौरान इस बारे में बात की थी। ईश्वर क्रोध करने में धीमा है। शाब्दिक अनुवाद मुश्किल से। हिब्रू का शाब्दिक अर्थ है कि ईश्वर की नाक वास्तव में लंबी है, क्योंकि जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी नाक गर्म हो जाती है, और भगवान की एक नाक है जो लगभग 6 फीट लंबी है। गर्मी को वहां से अंत तक पहुंचने में काफी लंबा समय लगता है। अब मैं कहता हूं कि कोई शाब्दिक अनुवाद नहीं है। अंग्रेजी दुनिया में कोई भी अनुवाद उस चीज का शाब्दिक अनुवाद नहीं करता है। यह कहता है उस कल्पना के पीछे क्या विचार था। ओह, विचार धैर्य है। विचार क्रोध करने में धीमा है। तो हम आपको विचार देंगे। ओह, मैंने सोचा कि यह शाब्दिक था। तो वैसे भी हम आज रात यशायाह 26 से 27 के बारे में बात कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अंदर बाहर होते रहे हैं और यह ठीक है, और आप में से कुछ लोग यहां और अंदर और बाहर रहे हैं, लेकिन मैं वहां गया हूं, ऐसा किया है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि हम कहां हैं। हम उस अनुभाग में हैं। हम बड़े वर्ग में हैं, 7 से 39, सेवकत्व के आधार पर भरोसा करते हैं। उस अनुभाग के अंतर्गत हम अध्याय 13 से 35 में हैं, विश्वास का पाठ। राजा आहाज परीक्षण में विफल रहा। उसे भगवान पर भरोसा नहीं था। उसने अपने 2 पड़ोसी शत्रुओं के विरुद्ध अश्शूर पर भरोसा किया। इसलिए परीक्षा में असफल होने के बाद हम फिर से किताबों की ओर लौटते हैं, और हमने अब तक 13 से 23 तक देखा है, राष्ट्रों पर भरोसा मत करो, राष्ट्रों के विरुद्ध न्याय के विभिन्न संदेश। वे सभी न्याय के अधीन हैं, और उनमें से कुछ आपके परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हैं। तो आखिर आप उन पर भरोसा क्यों करेंगे? अब मैंने पिछले सप्ताह कहा था, यह विशेष है, विशेष राष्ट्रों के साथ व्यवहार करना। अब इस अनुभाग में जिसे हम पिछले सप्ताह देख रहे हैं, और इसमें हमारे पास अधिक सामान्य उपचार है। ये दोनों ईश्वर की प्रभुता के बारे में बात करते हैं। यह विशेष राष्ट्रों के संबंध में है, यह विश्व के संबंध में है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह कहा था, यहां 13 से 23 में ध्यान राष्ट्रों पर है, और आपको यह आभास हो सकता है कि यहोवा सिर्फ एक रिएक्टर है। राष्ट्र अपने कार्य चुनते हैं, और भगवान कहते हैं, ठीक है, अब देखते हैं मैं इसके बारे में क्या करूंगा, मुझे आश्चर्य है। नहीं, यहां मुद्दा यह है कि इस सब के पीछे ईश्वर खड़ा है, और इतिहास के इस चरण में ईश्वर ही संप्रभु अभिनेता है। इसलिए पिछले सप्ताह हमने अध्याय 24 और 25 को देखा। हमने अध्याय 24 में देखा एक प्रकार का सारांश, यहां जो कहा गया है उसका एक सामान्य सारांश। सभी राष्ट्र नष्ट होने वाले हैं। पृथ्वी का शहर ध्वस्त होने जा रहा है, और वे नशे में गाने जो उन्होंने एक बार गाए थे, वे सभी शांत हो जाएंगे, क्योंकि उस अंतिम दिन अकेले प्रभु को ऊंचा किया जाएगा। वह अध्याय 24 है। अध्याय 25, परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत पर भोज करने जा रहा है। ओह हां, जाहिर है हम विजेताओं के लिए एक दावत। नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए एक दावत है। अब हम यहां सेमिटिक अतिशयोक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। सारी दुनिया नष्ट हो गई है, और वह पृथ्वी के सभी लोगों के लिए दावत करता है। वे सभी मर चुके हैं। ठीक है, आप एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी न्याय से नहीं बच पाएगा, और दूसरी ओर हर किसी के पास मुक्ति की संभावना है। इस प्रकार की बात यहां कही जा रही है, और वह उस महान पर्वत पर दावत करने जा रहा है, और उस पर्वत पर वह मानवता के चेहरे को ढकने वाले कफन को उखाड़ने जा रहा है। वह हमें मृतकों में से जीवित करने जा रहा है और उसने हमारे लिए जो किया है उसके कारण हम रात में गाने गाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अहंकारी बच जाएंगे। घमंडी और अहंकारी मोआब को नीचे धकेल दिया जाएगा, इसलिए बहुत से लोग सार्वभौमिकता के सिद्धांत से आकर्षित हैं। यही विचार है कि अंत में हर किसी को बचाया जाएगा। वह बहुत आकर्षक है। आप नरक के सिद्धांत के बारे में सोचते हैं और यह एक बहुत ही भयावह दुखद सिद्धांत है, खासकर यदि आपने प्रियजनों को खो दिया है। तो यह सोचना बहुत लुभावना है, ठीक है, किसी न किसी तरह भगवान इसे दूर कर देंगे। आप जानते हैं जब हम अंत में आते हैं और न्याय आसन के सामने हर कोई स्वर्ग में होता है और भगवान कहते हैं, क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? निःसंदेह हर कोई यही कहेगा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। नहीं, सीएस लुईस अपनी अद्भुत छोटी पुस्तक द ग्रेट डिवोर्स में वास्तव में इस बात को झूठ बताते हैं। यदि आपने वह पुस्तक नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे इसे पढ़ने का आग्रह करता हूँ। यह एक दृष्टांत है। ये वे लोग हैं जो नरक में हैं और उन्हें स्वर्ग की बस यात्रा करने का मौका मिलता है, और जब वे स्वर्ग आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे वाष्प और धुंध में रह रहे थे और अब वे वास्तविकता में आ गए हैं, और वास्तविकता है स्पष्ट रूप से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, और वे सभी पृथ्वी पर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे वे जानते थे जो अब एक राजा या रानी में बदल गया है। और यह भी डरावना है, और लुईस की कहानी के अनुसार एक को छोड़कर हर कोई नरक में वापस जाने का फैसला करता है, क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए उन्हें कुछ प्रिय छोड़ना होगा और वे इसे सहन नहीं कर सकते। तो यशाया अध्याय 25 में पुनरुत्थान के इस अद्भुत कथन में मोआब को खाद के ढेर में धकेल दिए जाने के बारे में उन भयावह छंदों के साथ उस अध्याय को समाप्त करता है, क्योंकि उन्होंने हर कीमत पर अपना गौरव चुना, और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है, यह काव्यात्मक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मौलिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। ईश्वर किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं बचाएगा, और अंत में हमारी इच्छा ईश्वर की इच्छा पर भारी पड़ सकती है, और फिर यह बहुत भयावह है। ठीक है, आज रात हम अध्याय 26 को देख रहे हैं। फिर से ध्यान दें कि हम कैसे शुरू करते हैं। उस दिन क्या एक गीत, अहां, यह इस खंड 24-25, क्षमा करें, 24 से 27 को एक साथ जोड़ रहा है। इसे एक साथ बांधने वाले विषयों में से एक गीत है। अब श्लोक में अध्याय 25 श्लोक 5, उस श्लोक के बिल्कुल अंत में वहां किस प्रकार का गीत गाया जा रहा है? भयानक लोगों का गीत, या यह संस्करण क्रूर लोगों का गीत कहता है। तो हाँ, एक गीत है, एक विजय का गीत, एक उत्पीड़न का गीत, एक आतंक का गीत। यहां 26 में कौन सा गाना है? प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। और प्रशंसा किस लिए? श्लोक 2, ठीक है, श्लोक 1 और 2। किस बात की स्तुति? एक मजबूत शहर, एक मजबूत शहर। यहां फिर विरोधाभास है। वहां पृथ्वी का शहर अपनी पूरी शक्ति के साथ है, शक्ति उत्पीड़न पर बनी है, शक्ति मानव शक्ति पर बनी है, और इसे समतल कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास एक शहर है और वह शहर गायन का कारण है। बाइबल के माध्यम से यह दिलचस्प है। हम एक बगीचे से एक शहर की ओर बढ़ते हैं। अब स्पष्ट रूप से देश में बड़ा होने के कारण मुझे लगता है कि इसे दूसरी दिशा में जाना चाहिए, लेकिन मैं किसी भी दिन भगवान की योजना अपनाऊंगा, लेकिन यह वही विचार है। हम शहर की ओर जा रहे हैं। शहर और शहर की दीवारें क्या हैं? मोक्ष, हाँ हाँ, एक दृष्टिकोण से यह बिना दीवारों वाला शहर है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से यह एक शहर है, और हम ईश्वर की उन दीवारों के अंदर सुरक्षित हैं। और आप जानते हैं, हम वेस्लेयन परंपरा में हम संपूर्ण पवित्रीकरण में विश्वास नहीं करते हैं। क्षमा करें, हाँ हम करते हैं। संपूर्ण सुरक्षा, शाश्वत सुरक्षा, मैं इसे अभी ठीक कर लूंगा। हम शाश्वत सुरक्षा में विश्वास नहीं करते। हम में से कई लोग शाश्वत असुरक्षा में विश्वास करते हैं। हे प्रिय, मुझे आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य है, हे भगवान, मुझे आश्चर्य है कि क्या भगवान ने हमारे लिए इस तरह जीने की योजना नहीं बनाई थी। अच्छी खबर यह है कि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको भगवान के हाथों से बाहर ले जा सकता है, आप। फिर मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मेरे लिए शादी करना संभव बना दिया है। मैंने विवाह से बहुत सारा धर्मशास्त्र सीखा है। मैं आज रात यहाँ खड़ा होकर आपको बता सकता हूँ कि मैं एक आदर्श पति हूँ, लेकिन करेन यहाँ है। तो अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ जिससे उसे ठेस पहुँचती है, तो क्या शादी खत्म हो जाएगी? नहीं, नहीं, क्योंकि उसका प्यार उससे भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन मान लीजिए कि मैं अहंकार पूर्वक गर्व से यह मांग करता रहता हूँ कि वह मुझे माफ कर दे। मेरे लिए खुद को उस प्यार से बाहर निकालना संभव है। मुझे ऐसा लगता है मोक्ष में भी ऐसा ही है। ओह, उसकी दीवारें आपको रोके रखने के लिए काफी मजबूत हैं। आप असफल हो सकते हैं, आप कभी कभी उसका दिल तोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप वास्तव में उसकी बाहों में रहना चाहते हैं, स्वर्ग में नहीं, जब तक आप रहना चाहते हैं उसके साथ उस रिश्ते में, और पश्चाताप करने और कबूल करने और अपने जीवन जीने के तरीके को बदलने के इच्छुक हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको उस शहर से बाहर ले जा सके। और यह अच्छी खबर है दोस्तों, वो अच्छी खबर है, उसमें हमारे पास एक सुरक्षा है जिसके साथ हम आत्मविश्वास से रह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। श्लोक 3 और 4 निस्संदेह प्रसिद्ध प्रसिद्ध छंद, और मुझे लगता है कि वे यही घटित हो रहे हैं इस इकाई के मध्य बिंदु में, हमें याद दिला रहे हैं कि यह किस बारे में है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। मैंने कहा था कि इस शहर में आने वाले लोगों की 3 विशेषताएं होती हैं, दरअसल 4 हैं। श्लोक 2 और 3 में वे क्या हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मैंने पहला सुना, धर्मी। ठीक है, ये वे लोग हैं जो सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चाहे यह उनके फायदे के लिए हो या नहीं, वे सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, आगे क्या है? हाँ, एक संस्करण कहता है विश्वास बनाए रखें, या वे वफादार हैं, यानी वे विश्वसनीय हैं, वे भरोसेमंद हैं। और याद रखें कि बाइबल के सोचने के तरीके में सत्य कहीं एक अमूर्त चीज की तरह नहीं है। सत्य जीने का एक तरीका है सच्चा होना, एक दूसरे के प्रति सच्चा होना, अपने वचन के प्रति सच्चा होना। तो ये वे लोग हैं जो सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे एक दूसरे पर और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। ठीक है, और क्या? उससे पहले दृढ़। हाँ, उनका मन आप पर ही लगा हुआ है, उनका एक निश्चित फोकस होता है। मुझे पता है कि मेरी चाहत क्या है, मुझे पता है मैं क्यों जी रहा हूं, और इसलिए मेरी मदद करो भगवान, मेरे जीवन में यही होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, शिक्षण के वर्षों में मैंने इसे कई बार देखा है, एक छात्र जो बड़े उत्साह के साथ पाठ्यक्रम शुरू करता है, ओह यह दुनिया का सबसे अद्भुत कोर्स है, मैं अभी बहुत कुछ सीखने जा रहा हूं, और कहीं न कहीं तीसरे या चौथे सप्ताह में आप देखते हैं कि उनका ध्यान खत्म होने लगा है। और वे इससे आकर्षित हो जाते हैं और वे इससे आकर्षित हो जाते हैं। और जब वे अंत में आते हैं तो उन्होंने बहुत कुछ नहीं सीखा है क्योंकि उनका ध्यान भटक गया है। आप जानते हैं, पॉल फिलिप्पियों में इसी क्षमता के बारे में बात कर रहा है। यह एक चीज जो मैं करता हूं, मेरी नजर दौड़ के अंत में टेप पर टिकी रहती है। मैं एक महान धावक लड़ाकू जिम रयान की कहानी कभी नहीं भूला हूं। और एक दौड़ में वह जानता था कि वह दूसरे स्थान पर रहने वाले से 30 या 40 गज आगे था। और जैसे ही वह टेप की ओर अंतिम खिंचाव में पीछे की ओर आया, उसने कहा कि वह अपने सिर से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे आश्चर्य है कि मैं कितना आगे हूं। और उसने पीछे मुड़कर देखा। और जब उसने ऐसा किया तो उसके पैर के अंगूठे ने राख को पकड़ लिया और वह सिर के बल चला गया। वह इतना आगे था कि जब उसने खुद को उठाया और दौड़ा तब भी वह तीसरे स्थान पर रहा। लेकिन उनका ध्यान भटक गया। उसने अपनी एकाग्रता खो दी। और हमारी दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि यह उन प्राथमिक चीजों में से एक है जो शैतान हमारे साथ करता है। वह हमें हजारों अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित कराता है। कभी कभी वह हमारा ध्यान एक गलत चीज पर केंद्रित करवा देता है। लेकिन मैं इससे भी अधिक बार सोचता हूं कि वह हमारा ध्यान भटका देता है। इसलिए हमारा ध्यान इस पर, फिर उस पर और फिर दूसरी चीज पर है। पॉल एक बात कहता है, टेप। और फिलिप्पियों में वह जो कहता है वह मुझे पसंद है। और मैं जानता हूं कि यह यशाया है, फिलिप्पियों का नहीं, परंतु वह कहता है कि मसीह यीशु में परमेश्वर की ऊपर की ओर बुलाहट के लिए। दुनिया में इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है इसका मतलब ये है। परमेश्वर ने मसीह में पौलुस का और पौलुस में मसीह का दर्शन रोपा है। और वह चीज वह टेप है जिसके लिए मैं दौड़ रहा हूं। यह एक काम मैं करता हूं। ठीक है। और फिर निस्संदेह आखिरी वह है जिसके बारे में हमने बात की है। आप में से कई लोगों ने विश्वास का उल्लेख किया। वहां है। और उस प्रकार के जीवन का परिणाम क्या है? यह जैसा कि मैं पृष्ठभूमि में कहता हूं, शालोम शालोम है। हम पुनः प्रयास करते हैं, कोई शाब्दिक अनुवाद नहीं। हम उस पूर्ण शांति का अनुवाद करते हैं, लेकिन पाठ पूर्ण शांति नहीं कहता है। यह सिर्फ शांति की शांति कहता है। पूर्ण शांति बिल्कुल भी बुरा अनुवाद नहीं है। मुझे लगता है यही विचार है। लेकिन मुद्दा यह है कि यह सिर्फ शालोम नहीं है, यह शालोम का शालोम है। अब मैंने आपसे पहले कहा है, इसे फिर से कहें, शालोम का अनुवाद शांति के रूप में किया जा सकता है। लेकिन यह अवधारणा का पूर्ण अनुवाद नहीं है। शांति उस बड़ी चीज के बारे में है। शालोम इतना बड़ा है। शालोम का एक पहलू वह है जिसे हम शांति, संघर्ष की अनुपस्थिति के रूप में सोचते हैं। लेकिन शालोम को एक साथ रखना है, संपूर्ण बनाना है, आपके जीवन के सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ खींचना है। मैं उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलूंगा जो टेलर यूनिवर्सिटी में हम में से बाकी लोगों से लगभग 3 साल बड़ा था और नेवी बैंड में था। वह शराबी था। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, हमने ठंड के दिनों में सीखा कि आपके ट्यूबा को जमने से बचाने का एकमात्र तरीका खेलना शुरू करने से पहले व्हिस्की का लगभग 1/5 हिस्सा पीना है। परंतु मल्लाह उस तक पहुंच गए और मल्लाहों के द्वारा यीशु उस तक पहुंच गया और वह अच्छी तरह से परिवर्तित हो गया था। मैं छात्रावास में हम में से कुछ लोगों के साथ प्रार्थना सभा में डिक बेरेंजी को यह कहते हुए सुनना कभी नहीं भूलूंगा, हे भगवान, बस मेरे जीवन को एक बड़े स्नोबॉल में इकट्ठा करो और इसे यीशु के लक्ष्य पर फेंक दो। वह शालोम शालोम है दोस्तों। वह हमसे संघर्ष की अनुपस्थिति का वादा नहीं करता है। वह कहता है कि यदि तुम उसका अनुसरण करोगे तो संभवतः तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि यह संघर्ष का अभाव है, लेकिन वह कहता है मैं तुम्हें एक साथ रख सकता हूं, मैं तुम्हें संपूर्ण बना सकता हूं। यह अच्छी चीज है, यह अच्छी चीज है जॉन। मुझे लगता है कि जो टुकड़ा हम अक्सर चूक जाते हैं कम से कम मेरे पास तो है, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। भगवान ने एक तरह से यह आदर्श टुकड़ा हम पर छोड़ा है। आप जानते हैं भगवान, यहाँ आपकी भयानक स्थिति है, यहाँ आपका आदर्श नमूना है। लेकिन मामले की सच्चाई यह है कि बात तब बनती है जब हम इन विशेषताओं को अपनाते हैं। और मुझे वास्तव में यह स्पष्ट करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही, एकदम सही। भगवान चमत्कार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ईश्वर भी कारण और प्रभाव के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध है। और यदि हमने कारणों को पूरा नहीं किया है तो हमें वास्तव में प्रभाव के बारे में पूछने का अधिकार नहीं है। हम सभी को फिर भी मुझे यहाँ बोनी का अनुसरण करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करूँगा, मैं अपने बारे में बात करूँगा। लेकिन जब मैंने शर्तों को पूरा नहीं किया है तो भगवान से यह काम करने के लिए कहना बहुत आसान है। और भगवान कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ जॉन, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ उसे पाने के लिए तुम कहीं भी नहीं हो। ठीक है, खैर चार छंदों के लिए आधा घंटा, यह बुरा नहीं है। बहुत अच्छे, मुझे यह टिप्पणी पसंद है कि यह बाइबिल, मेरा अध्ययन बाइबिल यहाँ उस श्लोक के बारे में है कि यह एक ऐसी निर्भरता है जो दोहरी मानसिकता को रोकती है। अच्छा, आप जिनकी सेवा करते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। यह एक ऐसी निर्भरता है जो दोहरी मानसिकता को रोकती है। यह एक अच्छा विचार है, एक अच्छा विचार है। हाँ हाँ, ठीक है। तो श्लोक पांच और छह में दूसरे शहर का क्या हुआ है? यह वह विषय है जिसे हमने पूरी किताब में देखा है ना? मैं अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ और क्या होने वाला है? भगवान का कदम मेरे रेत के महल पर पड़ने वाला है। उसने ऊंचे ऊंचे नगर के निवासियों को नम्र किया है। हाँ, वहां सुरक्षित शहर और ऊंचा शहर है। मुझे लगता है मैं सुरक्षित शहर ले लूंगा। वह इसे नीचे रख देता है, इसे जमीन पर रख देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मी का मार्ग समतल है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे यकीन है कि जून में काम पूरा होने से पहले मैं इसे फिर से कहूंगा, लेकिन यह किताब एक सिंफनी है। सिंफनी की विशेषताओं में से एक यह है कि विषय आगे आते हैं और आप कहते हैं ओ हाँ, मैंने इसे एंडांटे में सुना था और अब यह एलेग्रो में है। शायद थोड़ी अलग कुंजी, लेकिन यह एक ही विषय है। और फिर थोड़ी देर बाद ओह, यह फिर से आता है। और किसी सिंफनी को सुनने का एक आनंद उस पर बौद्धिक रूप से प्रतिक्रिया करने और अंदर और बाहर आने वाली चीजों को सुनने में सक्षम होना है। यह उन चीजों में से एक है जिसका श्रेय मुझे बहुत समय पहले टेलर विश्वविद्यालय में ललित कला पाठ्यक्रम को जाता है, जब एक देहाती लड़के को, जो मुख्य रूप से गिटार और यूकुलेले जानता था, एक ललित कला पाठ्यक्रम लेना पड़ा। उस समय मुझे यह पसंद नहीं आया, लेकिन वह समय अच्छा व्यतीत हुआ। ठीक है, तो यहाँ इन विषयों में से एक है जो फिर से सामने आ रहा है, जो पथ समतल है। अध्याय 40 में याद रखें, वह कहने जा रहा है कि भगवान आ रहे हैं। घाटियों को भरें, पहाड़ों को समतल करें, भगवान के हमारे पास आने के लिए एक सीधी सड़क। और यहाँ यह एक सीधी सड़क है जो वह हमें हमारे जीवन में देता है। हाँ, वहाँ पहाड़ियाँ हैं और घाटियाँ हैं। तुम उन्हें पाओगे, मैं उन्हें पाऊंगा। वह जीवन का हिस्सा है। लेकिन ईश्वर एक महान पृथ्वी निर्माता है जो घाटियों और पहाड़ियों के बीच में उन लोगों के लिए एक सीधा रास्ता बना सकता है जिनका मन उस पर केंद्रित है। यहाँ श्लोक 8 में फिर से आपके न्याय के मार्ग में हे भगवान हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। याद रखें कि मैंने बाइबल में पुराने नियम में क्या कहा है, विश्वास और प्रतीक्षा पर्यायवाची हैं। यह सिर्फ आपके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और यह कहना नहीं है ठीक है भगवान देरस बेर मुझे लगता है कि आप यहाँ कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन यह वह आश्वस्त अपेक्षा है। मैं आपके आगे नहीं भागने वाला और अपनी समस्या अपने तरीके से हल करने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपनी समस्या अपने तरीके से हल करने दूंगा और मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आप यह कैसे करने जा रहे हैं। यह आश्वस्त प्रत्याशा है और इसे विश्वास कहते हैं। आपको भगवान पर भरोसा नहीं है, आपको उसके आगे भागना होगा और अपनी समस्या को अपने तरीके से हल करना होगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो आप कह सकते हैं मुझे परवाह नहीं है कि मुझे कितने समय तक इंतजार करना होगा, मैं इसे अपने तरीके के बजाय आपका तरीका पसंद करूंगा। तेरे न्याय के मार्ग में हम तेरे नाम की बाट जोहते हैं। नाम के बारे में मैंने जो कहा है उसे फिर से याद रखें, यह उसका लेबल नहीं है, यह उसका चरित्र है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रतिष्ठा है। आपका नाम और स्मरण हमारी आत्मा की इच्छा है। यहाँ यह फिर से आता है, हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो मेरे माध्यम से आपका नाम महिमामंडित हो। मैं चाहता हूँ कि दुनिया यह याद रखे कि आप कौन हैं और आपने क्या किया है, क्योंकि वे मुझ में क्या देखते हैं। रात में मेरी आत्मा तुम्हारे लिए तरसती है, मेरे भीतर मेरी आत्मा तुम्हें उत्सुकता से खोजती है। अब मैं आपसे इन अगले 25 श्लोकों पर विचार करने के लिए कहता हूँ। जब तेरा न्याय प्रियवी पर होता है तब जगत के रहने वाले धर्म सीखते हैं। यदि दुष्ट पर अनुग्रह किया जाता है तो वह धर्म नहीं सीखता, वह खराई के देश में भ्रष्ट आचरण करता है, वह प्रभु की महिमा नहीं देखता। हे प्रभु तेरा हाथ तो उठ गया परंतु वे इसे नहीं देखते, वे अपने लोगों के प्रति तुम्हारा उत्साह देखें और लज्जित हों। तेरे प्रतिद्वंद्वियों की आग उन्हें भस्म कर दे। अब आपके अपने शब्दों में वह क्या कहता है, ठीक है अवसर तो है परंतु दुष्ट उसे पकड़ नहीं पाता। ठीक है, यशाया क्या नहीं चाहता कि परमेश्वर शीघ्रता से करे। खैर मुझे लगता है कि यह दूसरा तरीका है। मुझे लगता है कि वह नहीं चाहते कि वह प्रतिद्वंद्वी के लिए बहुत जल्दी अच्छा काम करें। यदि दुष्ट पर अनुग्रह किया जाता है तो वह धर्म नहीं सीखता, क्या आप इससे सहमत हैं? मैं जानता हूं कि यह बाइबल है लेकिन आप इससे असहमत हो सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा, क्या आप इससे सहमत हैं? वे नहीं चाहते, हाँ? उन्हें इस बात पर विचार करने का अवसर नहीं दिया गया कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, हाँ? ओह, मुझे लगता है कि अमेरिका में हमारी यही निराशाजनक स्थिति है। भगवान 200 वर्षों से हमारे लिए बहुत दयालु रहे हैं, हमें लगता है कि हम इसके लायक हैं, हमें लगता है कि हमने इसे अर्जित कर लिया है। हम इसे इस बात की पुष्टि के रूप में देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और सही हैं। यह सही है, यह सही है, यह बिल्कुल सही है। यशायाह कहता है, हे भगवान, आपको इन लोगों को न्याय की खुराक देनी होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इस समय स्वर्ग में हमारे बारे में यही कह रहा है। भगवान, वे जो कर रहे हैं और जिस तरह से जी रहे हैं, उस पर आप कब तक आंखें मूंदते रहेंगे? वे धार्मिकता नहीं सीख रहे हैं, वे दुष्टता सीख रहे हैं। तो यह मेरे लिए हमेशा से बहुत गंभीर दो या तीन छंद रहे हैं, क्योंकि जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि यह सही है, यह सही है। और इसलिए ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपको यहां एक और कविता के लिए बुलाऊंगा। ठीक है। तो वह कह रहा है, हे प्रभु, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम भरोसा कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं। लेकिन भगवान, जब तक आप दुष्टों पर अपना फैसला नहीं सुनाते, वे वही करते रहेंगे जो वे कर रहे हैं। आहा, इस बीच हम उनमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन फिर, और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है, हिब्रू भविष्यवक्ता एक बिंदु पर इतने लचीले हैं कि वह भगवान के लिए बोल रहे हैं। एक और मुद्दा, वह भगवान से बात कर रहा है। एक समय वह लोगों से बात कर रहे हैं। एक और बात, वह लोगों के लिए बोल रहे हैं। और यह देखना बहुत दिलचस्प है कि वह यहां किस तरह से आगे पीछे होता है। पद 12, हे प्रभु, तू हमारे लिए शालोम ठहराएगा। आपने हमारे लिए हमारा सारा काम किया है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आध्यात्मिक परिपक्वता की राह से काफी नीचे है, जब वे पहचान सकते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हासिल हुआ है, भगवान, अंतः यह आपका काम है, आपने यह कर दिखाया है। यदि आप वास्तव में ऐसा मानते हैं तो बहुत अहंकारी होना कठिन है। हे भगवान, हमारे भगवान, आपके अलावा अन्य भगवानों ने हम पर शासन किया है, लेकिन केवल आपका नाम ही हमें स्मरण आता है। हाँ, बहुत सारे राजा और शासक हुए, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ उदासीन, लेकिन अंत में यह आपका नाम है जो हम अपने ऊपर लिखा जाना चाहते हैं। माथे के उस पदक पर हम आपका नाम चाहते हैं। याद रखें, यीशु ने क्या कहा था, जितनी बार ऐसा करो, याद से करो। याद रखें, याद रखें कि आप कौन हैं और किसने आपको वह बनाया है जो आप हैं, इसे मत भूलना। तो फिर वह आगे बढ़ता है। पद 16 कहता है, हे प्रभु, हमने ऐसा नहीं किया, हमने दुनिया में कुछ हासिल नहीं किया। श्लोक 17, एक गर्भवती स्त्री की तरह जो प्रसव के करीब होने पर उठती है और दर्द से चिल्लाती है। तो क्या प्रभु, आप सभी के कारण हम गर्भवती थीं? हम छटपटाते हैं, लेकिन हमने हवा को जन्म दिया है। हमने पृथ्वी पर कोई उद्धार नहीं किया है और संसार के निवासी गिरे नहीं हैं। फिर वह यशायाह लोगों के लिए बोल रहा है, हमने दुनिया को धार्मिकता तक नहीं पहुंचाया है, हमने संसार की दुष्टता के लिए उसकी निंदा नहीं की है। यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वह फेंक दिए जाने और भूमि में रौंदे जाने के सिवा किसी काम का नहीं। हम मुक्ति नहीं लाए हैं, हमने निंदा नहीं की है, क्योंकि हम सिर्फ उदासीन रहे हैं। मैं लौदीसिया की कलीसिया को लिखे पत्र से कभी भी दूर नहीं हो सकता। आप न तो गर्म हैं और न ही ठंडे, तुम बिल्कुल गुनगुने हो और मैं तुम्हें उगल दूंगा। हे भगवान, हमारा ध्यान आप पर इतनी दृढ़ता से केंद्रित रहे कि हमारा उद्धार किसी के भी सामने प्रकट हो जाए, और ऐसा होने पर यह उन लोगों के लिए मृत्यु का स्वाद होगा जो खो गए हैं। याद रखें, पॉल यही कहता है, वह कहता है कि यह वही गंध होगी, यह उन लोगों के लिए जीवन की गंध होगी जो जीवित हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए मृत्यु की गंध होगी जो खो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर एक कार्य करता है ताकि हमारा उद्धार अचूक और इतना अचूक हो कि यह उन लोगों को दोषी ठहराएगा जिनका उद्धार नहीं हुआ है। हमारे द्वारा यह नहीं कहा जा रहा है कि आप बुरे हैं और आप नरक में जा रहे हैं। अब इसे कुछ लोगों से कहने की जरूरत हो सकती है। हम में से कई लोगों के पास जितना कहने का साहस है उससे कहीं ज्यादा, लेकिन उससे भी ज्यादा यह कहने की जरूरत है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। मेरे जीवन में क्या बात है कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। हमारे जीवन में मुक्ति की उपस्थिति से ही उनकी निंदा की जाती है। मैं वह वितरित होना चाहता हूं। फिर भगवान हमारी मदद करें, ठीक नहीं, भगवान ने मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किया है और यदि आप मेरी तरह कड़ी मेहनत करते हैं तो वह आपके लिए भी ऐसा कर सकते हैं। वह मौत की गंध है। नहीं 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 नहीं, लेकिन एक मदर टेरेसा जो गंदगी, मौत और शर्म के बीच भी घुटने टेक सकती है और उसे छू भी नहीं सकती। यद्यपि श्लोक 19 में परमेश्वर ने एक अच्छा वादा किया है, तुम्हारे मृतक जीवित हो जाएंगे, उनके शरीर उठ खड़े होंगे और तुम जो मिट्टी में रहते हो जागोगे और गाओगे। वहां यह फिर से है, खुशी के लिए गा रहा है, क्योंकि तेरा हक प्रकाश का हक है, पृथ्वी मुर्दों को जन्म देगी। हाँ हाँ, अंत में हम में से हर एक, जब तक कि यीशु पहले नहीं आता, मरने वाला है। लेकिन भगवान कहते हैं कि यह कहानी का अंत नहीं है। आपकी कमियां, आपकी असफलताएं कहानी का अंत नहीं है। कहानी का अंत पुनरुत्थान है। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। वह वक्र पर ग्रेड नहीं देता, वह एक मानक के अनुसार ग्रेड देता है। क्या आपने यीशु के लहू को अपना आवरण बना लिया है? क्या आपको एल्मर पार्सन्स याद हैं? हाँ, हाँ, वह हमेशा कहता था कि वह जापान में एक मिशनरी था और उसने कहा कि उसे उन लोगों के बारे में एक बात पता चली है। वह कहता है कि आपको उन्हें धन्यवाद कहने में मदद करनी होगी इससे पहले कि आप कभी भी उन्हें यह कहने में मदद कर सकें कि मुझे क्षमा करें, मुझे पश्चाताप है। मुझे लगता है कि आप यही कह रहे हैं, आप जानते हैं कि क्या आप वहां धर्मी हैं, लेकिन अगर आप मदर टेरेसा या उस जीवन की तरह चमकते हैं तो यह लोगों को लार टपकाने लगता है, उन्हें भूखा बना देता है और यही चीज उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। नहीं, आप जानते हैं, बेहतर होगा कि आप पश्चाताप करें, अन्यथा आप नरक में जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, मैं नहीं चाहता, मैं विकल्पों को स्पष्ट करने की आवश्यकता को कम नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप और मैं जो बात कह रहे हैं वह यह है कि यदि उसने उद्धार किया है हम में, वह वास्तव में निंदा बन जाएगी और यशायाह कह रहा है कि हम बच नहीं पाए हैं और इसलिए हमने उन लोगों पर निंदा की कोई भावना नहीं लाई है जो खो गए हैं। उस पर आपको बड़ी बहस मिल सकती है। हाँ सही, वहाँ ऐसे कई विद्वान हैं जो कहेंगे कि ये अध्याय ईसा से 100 वर्ष पहले लिखे गए होंगे क्योंकि उससे पहले किसी ने भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया था। हम यह नहीं जानते। तो हम असली उत्तर यह है कि हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि ईसा मसीह के समय तक फरीसी पुनरुत्थान में विश्वास करते थे और सदूकियों ने केवल पहली 5 पुस्तकों को स्वीकार किया था। मूसा ने पुनरुत्थान से इनकार किया था और यीशु ने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खेला था और पॉल ने भी ऐसा किया था। यह काफी दिलचस्प है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, लेकिन वास्तव में हम नहीं जानते कि यह कितना पुराना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मुझे लगता है कि बाइबल मुझे बताती है कि यशायाह ने यह पुस्तक लिखी है और इसका मतलब है कि यह विचार कम से कम 700 ईसा पूर्व जितना पुराना है, लेकिन क्या यह उस समय सुनने वाले हर किसी के लिए पूरी तरह से चौंकाने वाला था? जो मुझे लगता है कि शायद यह था, या शायद यह उस समय कुछ हद तक अधिक व्यापक था, हम वास्तव में नहीं जानते हैं। ठीक है, आइए श्लोक अध्याय 27 को देखें। मैंने आपको पृष्ठभूमि में बताया था कि पूरे निकट पूर्व में एक के संस्करण थे। मैं इसे सृजन कहानी कहना पसंद नहीं करता क्योंकि वे सृजन में विश्वास नहीं करते थे, कुछ ब्रांड नया जो पहले अस्तित्व में नहीं था। वे उत्पत्ति में विश्वास करते थे। अब बुद्धपरस्त मूलतः वही मानते थे जो आधुनिक नास्तिक वैज्ञानिक मानते हैं। हम 5000 वर्षों में बहुत दूर नहीं पहुंचे हैं और इसका मतलब यह है कि पदार्थ हमेशा अस्तित्व में है। पदार्थ शाश्वत है, अन्य कुछ नहीं। बुद्धपरस्तों का मानना था कि यह पदार्थ अराजक जलीय रूप में मौजूद था क्योंकि वे इस दुनिया से अदृश्य दुनिया का निर्माण कर रहे थे। और तुम इस दुनिया को देखो और क्या, जन्म किससे शुरू होता है? पानी फूट जाता है। आप मिट्टी को देखते हैं और जब तक आप उस पर पानी नहीं डालते, मिट्टी मृत है। तो शुरुआत में पानी वाली अराजकता थी और ज्यादातर मामलों में यह एक महिला थी क्योंकि यहां हम सभी एक महिला के शरीर से आए हैं। दुर्भाग्य से वह एक अच्छी महिला नहीं थी। वह मूलतः एक राक्षस थी। देवता उससे आए। उसने वृत्तांत की विभिन्न कमोबेश अश्लील कहानियों में उन्हें जन्म दिया। लेकिन और यह आपके पास बस है, आपको बस इसे प्यार करना है। वे सभी ये पागल देवता चारों ओर घूम रहे थे और पार्टी कर रहे थे और बहुत अधिक मौजमस्ती कर रहे थे और बहुत अधिक शोर कर रहे थे, और बुढ़िया ने उन सभी को मारने का फैसला किया। प्रत्येक माता पिता किसी न किसी रूप में बहा रहे हैं। क्या आप वह चीज बंद कर देंगे? इसलिए देवता भयभीत हो जाते हैं और अंततः वे एक प्रकार के सुपरहीरो का निर्माण करते हैं जो बूढ़ी महिला को मारता है और किसी न किसी तरह से उसके शरीर से इस व्यवस्थित दुनिया को अस्तित्व में लाता है। इस कहानी के कनानी संस्करण में इस मामले में अराजक व्यक्ति पुरुष है, लेकिन कहानी के कनानी संस्करण में अराजकता के देवता को लेविथान कहा जाता था। तो पुराने नियम में लगभग 6 या 7 स्थानों पर उस कहानी का संकेत मिलता है। अब मैं संकेत कहता हूं। यह यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। किसी चीज की ओर संकेत करना उसे संदर्भित करना है। और मैं यहां चित्रण का उपयोग करता हूं। मैं किसी के बारे में कहता हूं, वाह बूढ़े रॉन स्मिथ को देखो, वह असली हरक्यूलिस है। ओसवाल्ट, आप ग्रीक मिथक में विश्वास करते हैं?
नहीं, मैं नहीं करता। मैंने मिथक की ओर इशारा किया था, लेकिन मैं इस पर एक मिनट के लिए भी विश्वास नहीं करता। अब यह वही चीज है जो हिब्रू लोग कर रहे हैं। उन्हें इस कहानी पर विश्वास नहीं है। और जिन कारणों से मैं कह सकता हूं कि वे इस पर विश्वास नहीं करते हैं, उनमें से एक यह है कि वे भगवान द्वारा अराजकता से बाहर व्यवस्था लाने के लिए राक्षस को हराने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वे पाप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान द्वारा राक्षस को हराने के बारे में बात कर रहे हैं। बार बार जब वह संकेत बाइबल में आता है तो आप इसे देखेंगे। भगवान ने समुद्री राक्षस को कब हराया? जब वह अपने लोगों को लाल सागर के पार ले गया। खैर, नहीं, बुतपरस्त ऐसा नहीं मानते, लेकिन वे अपनी बात कहने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे लोग परिचित होंगे। यहां यही हो रहा है। अब सवाल यह है कि आपको क्यों लगता है कि इसका उपयोग यहां किया जाएगा? यशायाह ने इस बिंदु पर उसे क्यों खींच लिया है? ठीक है, ठीक है। हाँ, और यह एक दृष्टांत है जो प्रदर्शित करता है कि क्या ईश्वर की शक्ति, पाप को बचाने की ईश्वर की शक्ति ने दुनिया में अराजकता ला दी है। यह बुतपरस्त से बहुत अलग है। बुतपरस्त कहते हैं कि शुरुआत में अराजकता थी और किसी न किसी तरह इन देवताओं ने इस अराजक दुनिया पर कुछ हद तक व्यवस्था लागू की और आपको यह सुनिश्चित करने के लिए हर साल मिथक बताना होगा कि वह ऐसा दोबारा करे। नहीं, भगवान ने एक व्यवस्थित दुनिया बनाई है और हम हमारे प्रथम माता और पिता मनुष्य दुनिया में अराजकता लाए, लेकिन भगवान अपने बचाने वाले अनुग्रह में पाप की अराजकता में आ सकते हैं और हमें मुक्ति दिला सकते हैं। मैं एक मित्र ने हमें एक किताब के बारे में बताया, इसका शीर्षक अनब्रोकन है और मैं यहाँ बहुत अधिक शामिल होने का साहस नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा और हम आधी रात तक यहीं रहेंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में एक ओलंपिक धावक दक्षिण प्रशांत में एक विमान में बमवर्षक था। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसने और पायलट ने एक बेड़ा पर 47 दिन बिताए। यह अब तक का सबसे लंबा जीवित व्यक्ति है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वह नाव पर जीवित रहा है। वे एक जापानी द्वीप पर उतरे। उन्हें जेल शिविर में ले जाया गया और उन्हें मार डाला गया, लेकिन जापानियों को एहसास हुआ कि यह लड़का एक ओलंपिक धावक था और उन्होंने सोचा कि वे उसे बदल सकते हैं और उसे एक प्रचारक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उसे और पायलट को एक अपंजीकृत शिविर में भेज दिया। रेड क्रॉस को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वे वहां जो चाहे कर सकते थे और उन्होंने किया। वहां से उन्हें दूसरे कैंप में भेज दिया गया और अनुशासनात्मक अधिकारी एक मनोरोगी था जो लोगों को बेवजह पीटता था और फिर उन पर रोता था क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा था। उसने जानबूझकर इस लड़के लुईस ज़ैम्परिनी को चुना क्योंकि नंबर एक, वे उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, नंबर दो, क्योंकि उसने सोचा कि वह इतना बड़ा सख्त लड़का था, यह ओलंपिक लड़का। उन्होंने ऐसा नहीं किया और अंततः यह दिलचस्प था, हत्या का आदेश था। 22 अगस्त 1945 को सभी युद्धबंदियों को मार दिया जाना था और उनके शवों को ठिकाने लगा दिया गया था। परमाणु बम ने उनकी जान बचाई। वह घर आया और गड्ढे में चला गया। ये भयानक दुःस्वप्न, वह शादीशुदा। एक रात वह अपनी पत्नी के साथ फर्श पर उठा, उसकी छाती पर बैठा, उसका गला घोंट रहा था, सोच रहा था कि वह इस जापानी व्यक्ति का गला घोंट रहा है। शराबखोरी बहुत भयानक है। एक रात उसकी पत्नी एक तंबू बैठक में गई। 1950 लॉस एंजल्स, बिली ग्राहम। उसका धर्म परिवर्तन हो गया। वह उससे तलाक लेने की योजना बना रही थी। उसने उसे छोड़ दिया था। तलाक के कागजात पूरे करने के उद्देश्य से वापस आई थी। वहां गई, वह घर आई और उससे कहा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। मैं चाहता हूं कि आप इस आदमी को सुने। उसने संघर्ष किया, संघर्ष किया। आखिरकार बिली ग्राहम जो कह रहा था उस पर क्रोधित होकर वह पिछली पंक्ति में जाकर बैठ गया। जब वे निमंत्रण दे रहे थे तब बाहर आए, उसे अपने पीछे खींच लिया। पीछे से बाहर जाने के लिए जा रहे थे और अचानक जब विमान नीचे जा रहा था तो वह पानी के नीचे तारों से ढका हुआ था। जब वह पास आया तो वह अंधेरा हो गया, तार गायब थे और वह सतह पर लड़खड़ा रहा था। बेड़ा पर एक समय वे 8 दिनों तक पानी के बिना थे और वे मर रहे थे। और उसने प्रार्थना की और कहा, हे परमेश्वर, यदि तू हमारे लिए वर्षा करेगा तो मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगा। 6 घंटे बाद एक तूफान आया। एक जापानी बमवर्षक ने उन्हें ढूंढ लिया, 3 ब्लास्टिंग पास बनाए और उनके बेड़े में 48 गोलियां दागी। उनमें से किसी को भी छुआ नहीं गया। उन्हें क्वाजालीन ले जाया गया। क्वाजालीन जाने वाले हर व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उन्होंने ऐसा नहीं किया इत्यादि। वह वहीं खड़ा था। पिछले 5 वर्षों से उसके पास ये सभी फ्लैशबैक थे। वहां खड़े खड़े उसे अपने चेहरे पर बारिश का एहसास हुआ। और लेखक का कहना है कि यह उसका आखिरी फ्लैशबैक था, क्योंकि वह दरवाजे से बाहर जाने के बजाय गलियारे से नीचे चला गया था। परमेश्वर पाप की अराजकता को व्यवस्था में बदल सकता है। लुईस पेरिनी एक प्रचारक बन गए। उन्होंने अपना शेष जीवन बच्चों के साथ काम करते हुए बिताया। जब वह 92 वर्ष के थे, 2008 में वह एक पेड़ पर चढ़े हुए थे और एक जंजीर से उनका एक अंग कट गया था। उसका भाई उस पर चिल्लाया और लुई ने कहा, ठीक है, जब भी वह तैयार होगा भगवान मुझे ले जाएगा। और उसके भाई ने कहा, फिर तुम उसकी सहायता करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? परमेश्वर पाप की अराजकता को व्यवस्था में बदल सकता है। ये तो यही कह रहा है। और इसलिए फिर वह अंगूर के बगीचे के बारे में बात करता है। याद रखें, हमने अध्याय 5 में अंगूर का बाग देखा था। कड़वे अंगूरों का बाग था। परमेश्वर ने इसे बहुत सावधानी से लगाया था और इससे केवल कड़वे अंगूर पैदा हुए। और भगवान कहते हैं कि हम इसे नष्ट कर देंगे। हम जंगली जानवरों को बुलाने जा रहे हैं। तो अब यह एक मनमोहक दाख की बारी है, इसके बारे में गाओ। मैं प्रभु इसका रक्षक हूं। मैं प्रतिपल इसे सींचता हूं, कहीं कोई इसे दंड न दे। मैं इसे रात दिन रखता हूं। मुझे कोई क्रोध नहीं है। काश कि मेरे पास युद्ध के लिए कांटे और झाड़ियां होती। मैं उनके खिलाफ मार्च करूंगा। मैं उन्हें एक साथ जला दूंगा। उन्हें मेरी सुरक्षा संभालने दो। उन्हें मेरे साथ शालोम बनाने दो। उन्हें मेरे साथ शालोम बनाने दो। वह आगे कहते हैं, अगर मैंने तुम्हें सजा दी है तो बस इतना याद रखना, मैंने तुम्हें उतना कठोर दंड नहीं दिया जितना मैंने तुम्हें दंड देने वालों को दंड दिया है। ये कितना सच है। इज़राइल आज भी अस्तित्व में है। बेबीलोन को खत्म हुए 2500 साल हो गए हैं। और यहीं पर मैंने आपको इब्रानियों की ओर इशारा किया, जहां इब्रानियों में कहा गया है, भगवान उन्हें अनुशासित करते हैं जिनसे वह प्यार करते हैं। मैं उस फुटबॉल कोच को कभी नहीं भूलूंगा जिसने कहा था, अगर मैं तुम पर चिल्ला रहा हूं तो तुम्हारे लिए उम्मीद है। जब मैं तुम पर चिल्लाना बंद कर दूं तो चिंता करना शुरू कर दो। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। और उस 12वें अध्याय में इब्रानियों, यदि आपने इसे नहीं देखा है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसे देखें। इब्रानियों उस अनुशासन की बात करती है जो प्रेम से उत्पन्न होता है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए वास्तव में उस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। जब मैं कठिन समय से गुजर रहा होता हूं तो मैं कहता हूं, ठीक है, आप मुझे किसी चीज की सजा दे रहे हैं, या तुम मुझसे नफरत करते हो या तकनीकी रूप से नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवहार में अनुशासन और सजा के बीच अंतर है। सजा बस यह कहती है कि तुमने गलत किया और मैं तुम्हें कष्ट देने जा रहा हूं। अनुशासन कहता है कि आपने गलत किया, मैं आपको इसके परिणाम लेने की अनुमति देने जा रहा हूं। इसलिए जैसा कि मैंने कई बार कहा है और हम कई बार कहेंगे, विनाश कभी भी भगवान का अंतिम शब्द नहीं है। और यही वह यहां कह रहा है, तुम मेरी दाख की बारी हो। तुम कभी भी मेरा अंगूर का बाग बनना बंद नहीं करोगे। शायद विनाश मेरा अंतिम शब्द होगा, लेकिन यह मेरा इच्छित अंतिम शब्द नहीं है। मेरा इरादा अंतिम शब्द उन जंगली अंगूरों को वहां से बाहर निकालना है ताकि अच्छी अंगूर की लताएं वास्तव में आ सकें और फल दे सकें। कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना, अगर मैं अपने दृष्टांतों को मिला सकूं। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हम आपके लिए अनमोल हैं। धन्यवाद कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा दुश्मन हो जो आसपास आ जाए और आप उसे मार सकें। धन्यवाद। हे भगवान, हमारी मदद करो। जब हमने गलत किया है और आप हमें अनुशासित कर रहे हैं, तो आप पर अविश्वास करने के लिए नहीं, गलत अर्थों में आपसे डरने के लिए नहीं, बल्कि हे भगवान, अपना अनुशासन प्राप्त करने में हमारी मदद करें, यह जानते हुए कि यह प्यार के हाथ से आता है। भगवान, इस कमरे में जिस तरह से आपने अराजकता, पाप की अराजकता को मोक्ष के क्रम में बदल दिया है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हे भगवान, हमारी मदद करो, मुझे इतना छुटकारा दिलाने में मदद करो कि जो कोई भी देखे वह कहेगा, भगवान ने उस आदमी के लिए कुछ किया है। यह हम सभी के लिए सच हो, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ। तथास्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 28 और 29 अगले सप्ताह। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 13, यशायाह अध्याय 26 और 27 है।